प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दिया था पार्लियामेंट में, उन्होंने भी ये सवाल पूछा था कि कांग्रेस नहीं होती तो क्या। नेहरू गांधी फैमिली पे क्यों नहीं लिखा आपने, इस तरीके से क्यों नहीं लिखा कि व्हाट इफ देयर वाज नो नेहरू गांधी फैमिली रादर देन व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस।
कि डॉक्टर सिंह से अगर कुछ गलतियां हो जाए तो वो डॉक्टर सिंह की गलती, कुछ अच्छा करे तो वो सोनिया मैडम का जेनरोसिटी और थिंकिंग।
वो ये कहेंगे कि अब देखो मोदी जी जो अच्छा करते हैं वो मोदी जी के कहते हैं और जो खराब हो जाता है वो मिनिस्टर को ब्लेम कर देते हैं।
मनीष शंकर अय्यर हैड सेड दैट व्हेन आई रिसीव्ड न्यूज ऑफ संजय गांधी इज डेथ I said to myself, thank you, there is a God somewhere.
ऐसा लिखा है क्या?
जी, अगर कांग्रेस नहीं होती तो शायद पार्टीशन होता, लेकिन जितनी जमीन हमने पाकिस्तान को दे दी वो काफी कम कर पाते। नेहरू रोट दिस लेटर, ही वॉज विलिंग टू बैल्कनाइज इंडिया अकॉर्डिंग टू हिज लेटर दैट ही रोट टू क्रिप्स इन 1946, 27 जनवरी 1946। गांधी जी गए माउंट बैटन के पास और क्या किया उन्होंने उस मीटिंग में, ही रोट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि उनको भी पता था कि उन्हें साइडलाइन किया है। आज मेरा मौन व्रत है लेकिन तुम भी नहीं चाहोगे कि आज मैं कुछ बोलूं। सरदार पटेल डाइड अ कांग्रेसमैन, लेट्स पुट इट दैट वे, ही वाज अ कांग्रेसमैन व्हेन ही वाज अलाइव एंड ही डाइड आल्सो अ गांधीयन कांग्रेसमैन। तो ये पंडित जी की जो कंडीशंस है कि शेख अब्दुल्ला को रिलीज करो प्रिजन से, उसको सब करता धरता बना दो, फिर हम आपका एक्सेशन एक्सेप्ट करेंगे, वो भी किया इवेंचुअली डेस्परेशन में, वो भी महाराजा हरि सिंह ने किया। और फिर तब तक कवालीज आ गए, बहुत देर हो गई। अब यूएन जाने से पहले क्रिसमस के दिन पे एक और लेटर है जो माउंटबेटन ने पंडित जी को लिखा है। मतलब आपकी इम्प्रेशन एज अ स्टेट्समैन गलत पड़ेगी इसलिए आप यूएन चले जाओ, ऐसा लेटर में लिखा। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को थोड़ा मानना ही पड़ेगा ना कि आपने 45% लैंड दे दिया जम्मू कश्मीर का। तब से ये मेट्रो के आर्काइव्स में लिखा है कि केजीबी ने इंदिरा जी को काफी ग्रूम किया। जब उनकी डेथ हुई संजय गांधी की, तब बीके नेहरू ने राजीव गांधी को पूछा ये जो सारा पैसा संजय ने कलेक्ट किया है वो कहाँ है। तो राजीव गांधी बोले कांग्रेस की अलमारी में तो सिर्फ 20 लाख रुपए है।
इन्होंने क्रिएट किया था,
तो फंड भी किया उन्होंने, उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इन्होंने फंड की थी। फिर जयप्रकाश जी ने ये अपने लेटर में लिखा है कि आई थिंक आई वॉज पॉइजन।
हम बात करते हैं बट इफ देयर वॉज नो कांग्रेस, अगर कांग्रेस ना होती तो शायद बीजेपी भी ना होती। राम राम प्रियम जी, कैसे हैं आप?
जय श्री राम।
जय श्री राम। आपकी नई पुस्तक आ गई है, ये दिखा देता हूँ मैं सबको, दिख रहा है सही? What if there was no Congress?
जी।
तो ये काफी पॉलिटिकली चार्ज्ड बुक है ऑब्वियसली। तो आपने ये एक तो आइडिया जो है मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दिया था पार्लियामेंट में, उन्होंने भी ये सवाल पूछा था कि कांग्रेस नहीं होती तो क्या। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि व्हाट इफ़ वाले जो चीज़ें होती हैं कि व्हाट इफ़ इंडिया वाज, मतलब अगर भारत आज़ाद हो जाता 1910 में, जब उस टाइप के हमारे रिवोल्यूशनरीज थे, तो एक एनर्जी जो थी कंट्री में उस टाइम पे वो बहुत ही अलग थी। 1947 में काफ़ी चीज़ें सेटल हो गई थी, शायद पार्टीशन नहीं होता। व्हाट इफ़ देयर वाज नो पार्टीशन, व्हाट इफ़ देयर वाज नो एमरजेंसी, व्हाट इफ़ संजय हैड नॉट डाइड, what if Rajiv Gandhi had not died, so things like that, what if Rajiv had not married Sonia, so बहुत सारे what ifs, interesting what ifs हैं। तो ये भी एक बहुत ही interesting what if है। अच्छा, मेरे को ये लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा कुछ लोगों, जैसे डायनेस्टी की बात आती है तो कहते हैं कि चलो कांग्रेस तो ठीक है बट मतलब डायनेस्टी में प्रॉब्लम था, अगर नेहरू ना बनते उसके बाद शायद एक बहुत अलग हो सकता था। तो ये कांग्रेस ही क्यों, नेहरू गांधी फैमिली पे क्यों नहीं लिखा आपने, इस तरीके से क्यों नहीं लिखा कि व्हाट इफ देयर वाज नो नेहरू गांधी फैमिली रादर देन व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, पहले तो व्हाई ऑन द कांग्रेस एंड व्हाई नॉट जस्ट ऑन द फैमिली, क्योंकि हमने लास्ट जो यूपीए की गवर्नमेंट देखी, हमने देखा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार वॉज सिंपली अ पपेट सरकार, और एक्चुअल डिसीशन मेकिंग, एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग, actual work was done by the NEC which Sonia ji was heading. हमने ये भी देखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऑफिस के खुद के PMO के लोग ने अब बाहर आके बताया है और लिखा है extensively कि डॉक्टर सिंह से अगर कुछ गलतियाँ हो जाए तो वो डॉक्टर सिंह की गलती, कुछ अच्छा करे तो वो सोनिया मैडम का जनरोसिटी और थिंकिंग। तो अब पूरी की पूरी पार्टी ही इन्होंने हाईजैक कर ली है, कोई इंडिपेंडेंट माइंड्स रहे नहीं है, जो थे वो पार्टी से निकल चुके हैं, या तो इंडिपेंडेंट है जैसे कि आज़ाद साहब, या फिर बीजेपी में आ गए हैं, या फिर पॉलिटिक्स से बाहर ही चले गए हैं. तो इट इज़ एसेंशियल टू राइट दिस कि व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, बिकॉज एसेंशियली द पार्टी हैज़ बीन हाईजैक्ड बाय द गांधी नेहरू फैमिली एंड इट रन्स लाइक अ, दे रन इट लाइक अ बिजनेस.
अच्छा, आपने ये जो आपने बात कही कि भाई इंटरेस्टिंग है कि जो सारी गलतियां थी वो डॉक्टर सिंह की थी और जो प्रेज थी वो नेहरू गांधी फैमिली की होती थी, ये बात जो भाजपा के कट्टर विरोधी हैं वो ये कहेंगे कि अब देखो मोदी जी जो अच्छा करते हैं वो मोदी जी के कहते हैं और जो खराब हो जाता है वो मिनिस्टर को ब्लेम कर देते हैं.
इसका मैं आपको इसका मैं आपको उदाहरण देके
जी
एक्सप्लेन करूंगी. डीमोनेटाइजेशन का नेगेटिव रेप्यूटेशनल इम्पैक्ट किस पे आया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे. कभी भी किसी और भाजपा फैमिली में से या उनकी पार्टी में से या इकोसिस्टम में से किसी ने कहा है कि नहीं नहीं ये मोदी जी का आइडिया नहीं था, ये एक्स मिनिस्टर का आइडिया था, ये वाई एडवाइज़र का आइडिया था? नहीं. कॉन्ट्रास्ट करिए एक और उदाहरण से. पिछले हफ्ते मणिशंकर अय्यर जी ने एक किताब रिलीज करी
अरुण नेहरू के ऊपर डाल दिया और उसमें लिखा है बीजेपी प्लांटेड अरुण नेहरू.
यस. उस किताब में हम देख रहे हैं श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पे कितनी चर्चा हो रही है मीडिया में एक महीने से. कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जो है वो बोलते आ रहे हैं एक महीने से कि राजीव जी ने ताले खोले तो गांधी फैमिली कैसे श्री राम के विरुद्ध हो सकता है जब हमारे ही लीडर ने ताले खुलवाए. अब मणिशंकर अय्यर जी पिछले हफ्ते बता रहे हैं कि ताले तो अरुण नेहरू ने खोले हैं राजीव जी की इन्फॉर्मेशन के विरुद्ध, तो कैसे क्रेडिट ले सकते हैं राजीव जी?
और जब मणिशंकर अय्यर बोलते हैं तो आप ये पूरा गारंटी हो सकती है, ऑलमोस्ट 99% आप पक्के हैं कि फैमिली से आ रही है डायरेक्शन.
हाँ, और इसी कॉन्टेक्स्ट में और एक चीज अगेन जो मणिशंकर अय्यर जी ने अपनी किताब में भी लिखी और बोली भी पिछले हफ्ते, क्योंकि आपने पूछा व्हाट इफ संजय गांधी हैड नॉट डाइड, टू दैट मणिशंकर अय्यर हैड सेड दैट व्हेन आई रिसीव्ड न्यूज ऑफ संजय गांधीज डेथ आई सेड टू माई सेल्फ थैंक यू देर इज अ गॉड समवेयर.
ऐसा लिखा है क्या?
जी.
पिन ड्रॉप साइलेंस. चलिए, तो इसमें शुरुआत होती है सेक्शन वन पार्टीशन. पार्टीशन में आपने दो चैप्टर लिखे हैं, पार्टीशन वन पार्टीशन टू. जो पार्टीशन तक आते आते जो इवेंट्स हुए कांग्रेस में, गांधी नेहरू बोस जिन्ना इनके बीच में जो रिलेशनशिप थी उसके बारे में विस्तृत चर्चा है आपकी पुस्तक में. तो ये बताइए कि इसमें कांग्रेस का जो रोल रहा पार्टीशन में उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अगर कांग्रेस नहीं होती तो क्या कुछ अलग हो सकता था? मतलब कितना रोल आप कहेंगे कि कांग्रेस का है इन इंडियाज पार्टीशन? पहला ये, क्योंकि हमने भी कई डिस्कशन किए हैं, आपने शायद देखा भी होगा शिवकुनाल वर्मा जी के साथ, कि एक कंसेंसस बन रहा है कि ब्रिटिश का जो प्लान था उनको ये तो दिख गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी कभी भी छोड़ के जाना पड़ सकता है, बट हमको अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने हैं इस देश में. और उनके इंटरेस्ट थे कि जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, गिलगित का जो एरिया है और जो अफगानिस्तान से लगते हुए एरिया, यस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तो ये सब उनको सिक्योर करना है. तो इनका जो एक 1919 का जो डॉक्यूमेंट बोला जाता है कि जो शिवकुनाल वर्मा जी ने बताया उन्होंने खुद देखा था और बाद में राजीव गांधी के पीएमओ में भी था, उसमें यह था कि तीन भागों में बांटने का था, इंडिया पाकिस्तान और भारत, हिंदुस्तान पाकिस्तान और प्रिंसिस्तान. तो ये तीन, मतलब 1919 में ही उनका एक ब्रॉड प्लान बन गया था, उसी टाइम पे इसराइल का भी, ये पैलेस्टीन का भी बना था. तो उस सेंस में देखें तो इनका आइडिया तो कभी था, इट्स जस्ट अबाउट की बाउंड्री किधर खींचनी, एग्जैक्ट बाउंड्री वो 1947 में हुआ. तो इस पर बताइए कि इसमें कांग्रेस सिर्फ एक मतलब मोहरा था कि मतलब कांग्रेस के लीडर्स को किस तरीके से प्ले करना है, कैसे रिलीजियस टेंशन्स बढ़ाने हैं, कैसे जिन्ना को यूज़ करना है. ये भी उन्होंने बोला कि जिन्ना को रिक्रूट किया था ब्रिटिश MI6 ने टू रन दिस पाकिस्तान प्लान. तो ये इसमें कांग्रेस को कितना ब्लेम करे कि आर वर दे विक्टिम्स और वर दे ऑल्सो being foolish or were they conspirators or what was the exact role? आपके हिसाब से क्या कांग्रेस का कितना लीडर्स का क्या रोल था इसमें?
अगर कांग्रेस नहीं होती तो शायद पार्टीशन होता, लेकिन जितनी जमीन हमने पाकिस्तान को दे दी वो काफी कम कर पाते, नंबर वन. नंबर टू, आराम से स्टेजेस में जॉइंट मिलिट्री के साथ शांतिपूर्वक तरीके से इस पार्टीशन को एग्जीक्यूट कर पाते शायद. सो जो हेस्ट में हुआ और इतनी सारी जमीन हमने दान में दे दी या ले ली गई हमसे, वो तो पूरा ब्लेम उस वक्त की कांग्रेस लीडरशिप को जाता है. अब मैं आती हूँ कि नाउ लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट. हाँ, कि व्हेन गांधी जी, जब गोखले जी ने गांधी जी को बुलाया साउथ अफ्रीका से, तब मोहम्मद अली जिन्ना वॉज सीनियर टू महात्मा गांधी जी इन द कांग्रेस. ही यूज्ड टू फाइट कोर्ट केसेस अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. तब गांधी जी आए अपना पूरा हिंदुत्व लेके, एक पार्टी रखी थी जिन्ना जी के घर पर और गोखले जी ने होस्ट की थी. दिस वॉज लाइक अ वेलकम पार्टी. उस पार्टी में महात्मा गांधी ने ये स्पीच दी, ऐसे थैंक यू स्पीच, एंड फ्रॉम द डायस अबाउट मोहम्मद अली जिन्ना ही सेड कि आई एम वेरी हैप्पी कि कांग्रेस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जैसे मुस्लिम को इतना पद मिल पाया है. दैट्स व्हेन द स्पार्क्स बिटवीन द टू मेन स्टार्टेड. एंड देन एज गांधी जी ज़्यादा अपना हिंदुत्व एम्ब्रेस करने लगे कि फ्री इंडिया में राम राज्य होना चाहिए, यू नो, अपने आश्रम में सबको बुलाते थे मीटिंग्स के लिए, या फिर सत्याग्रह, अहिंसा, उनके जो प्रिंसिपल्स वो प्रोपगेट करते थे, दे वो सो हिंदुत्व राइट, कि तब मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे जो सेक्युलर मुस्लिम लीडर्स थे, उनको लगा कि अगर महात्मा गांधी, जो अब सबसे पॉपुलर लीडर बन चुके हैं, अगर उनको राम राज्य चाहिए आज़ाद भारत में, तो फिर यहाँ मुसलमानों के लिए कहाँ है जगह. तो ये इनसिक्योरिटी तो उनको महात्मा की वजह से आई, ये तो मानना ज़रूरी है.
बट अगर आप 1916 का जो कांग्रेस जो एक वो हुआ था, इनका एग्रीमेंट हुआ था, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग नहीं पता नहीं क्या, मतलब उस टाइम पे दोनों, जिन्ना वाज वेरी मच एक्टिव और उसमें इवन तिलक, वो उन्होंने भी एग्री किया था, वो एजेंडा था जो 14-point एजेंडा था, तो उसमें भी जो सेपरेटिज्म था वो तो था ही. इट वाज वेरी मच एविडेंट.
इट वाज, बट आफ्टर 1920 व्हेन जिन्ना गॉट टायर्ड ऑफ कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी, ही वेंट बैक टू द यूके.
हां, 1932
के बाद रिटायर हो गए थे. आई विल प्रैक्टिस माय लॉ इन द यूके एंड आई विल अर्न मनी एंड ऑल ऑफ दैट. तभी तो मुस्लिम लीग खत्म हो चुकी थी इलेक्टोरली. तब जब वो प्रोविंशियल इलेक्शंस भी हुए, दे बेयरली सिक्योर्ड एनी सीट्स
35 में,
राइट? दे बेयरली सिक्योर्ड एनी सीट्स. उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 की रिक्रूटिंग के वक्त, वहां पे भी गांधी जी वांटेड टू रिक्रूट इंडियन पीपल फॉर वर्ल्ड वॉर 2. ही वांटेड द बिजनेसमैन टू फंड वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर द ब्रिटिश. वो जाके अपनी ओर से कमिटमेंट भी देके आए, you know, but eventually they led a civil disobedience movement, that is all different. Lekin yahan pe Muhammad Ali Jinnah took over the Muslim League and made promises to the British because he saw that outlet. Unko wo outlet dikha ki shayad main ye promise karu to mujhe return mein ye milega. Aur tab mana jata hai ki wo itna overtly committed the Muhammad Ali Jinnah ki I think this is there in You know, the British records that he has said के अगर उनको matchbox size का भी पाकिस्तान दे देते ना, तो वो लेने को ready हो जाते. तो हमने क्यों नहीं negotiate किया?
नहीं, ये बात तो है. उसमें जो अंबेडकर ने भी लिखा है,
हाँ,
कि जो total exchange of population, जब एक idea पाकिस्तान का बन गया और उस पे सहमति भी हो गई कि भाई चलो partition करना ही है, तो जिस आइडिया पे पार्टीशन हुआ कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, तो फिर इंडिया में कैसे रह रहे? मतलब टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन तो हुआ ही नहीं, और जिस उसके हाँ. हिसाब से आपको जो लैंड मिला उसके हिसाब से पॉपुलेशन नहीं मिली.
बिल करेक्ट. और 1942 के जो 1942 से नेहरू जी के जो लेटर्स है वायसराय के साथ और बैक एंड फोर्थ, उसमें तो क्लियरली वो मेंशन करते हैं दैट आई एम विलिंग टू बैल्कनाइज. ही इज वेरी क्लियरली मेंशनिंग इट. तो उनको तो ये तब से मान्य था कि ये डिवाइड होने ही वाला है. उनको वो लेटर में तो उन्होंने वो भी लिखा है कि जो प्रिंसली स्टेट्स है, वो जो छोटे छोटे है एक जियोग्राफिकल एरिया में साथ आके क्लस्टर बना के वो इंडिपेंडेंटली अपना रन कर सकते हैं. तो प्रिंसेस्तान भी एक नहीं होता. क्लस्टर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वुड बी डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंट्रीज एंड देयर वुड बी पाकिस्तान एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स लाइक कश्मीर और हैदराबाद वुड बी सेपरेट कंट्रीज. मतलब 7-8 कंट्रीज बन जाती अकॉर्डिंग टू नेहरूज प्लान इन हिज एडमिशन इन हिज लेटर. तो
ये कब का है लेटर?
नेहरू रोट दिस लेटर. ही वॉज विलिंग टू बैल्कनाइज इंडिया अकॉर्डिंग टू हिज लेटर दैट ही रोट टू क्रिप्स इन 1946, 27 January 1946. एसेंशियली वो इसमें कहते हैं कि छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स क्लस्टर बना सकते हैं, बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ये क्लस्टर्स भी फिर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और इंडिया एंड पाकिस्तान. सो बेसिकली ही सेइंग सम प्रिंसली स्टेट मे बी एनकरेज्ड नॉट टू जॉइन द इंडियन यूनियन इफ देर इज अ पाकिस्तान. हाउएवर ओनली द लार्जर स्टेट्स परहैप्स अ डजन कुड रियली सर्वाइव एज इंडिपेंडेंट फेडरल यूनिट्स. ऑल अदर्स मस्ट बी अब्सॉर्ब्ड इनटू प्रोविंसेस और अमलगेमेट टू फॉर्म बिग इनफ फेडरल यूनिट्स विद द सेम डेमोक्रेटिक लिबर्टीज एंड फॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज इन द प्रोविंस. ही वॉज ओके विद द बैल्कनाइजेशन.
So basically Article 370 in every state, essentially.
उसके बाद भी ना नेहरू had a conversation with a Labour Party MP, Wyatt, and he said British might have to declare for Pakistan, but there must be a plebiscite in border districts so that solid blocks of Hindu territory are not included in Pakistan. So that so he put the idea of plebiscite.
I think वो जूनागढ़
तो ये तो बहुत पहले है कश्मीर के इशू के.
ठीक है, ये पार्टीशन हो गया. अगर कांग्रेस नहीं होती तो व्हाट योर मेन थीसिस इज, मेन पॉइंट इज कि जितना हमने उनको टेरिटरी दिया या तो हम वो नेगोशिएट कर सकते थे या जितना हमने पॉपुलेशन जो हुआ वो एक्सचेंज नहीं हुआ वो शायद हो पाता अगर नेहरू और गांधी और उनकी कांग्रेस नहीं होती, किसी और की कांग्रेस होती.
एंड आई ऑल्सो फील के जो पार्टीशन का इवेंचुअल प्लान आया जो एक्सेप्ट किया नेहरू जी ने, उस वक्त की भी ये स्टोरी है कि वेन माउंटबेटन टुक चार्ज पार्टीशन के कुछ 4 महीने पहले आई थिंक वो आए थे मार्च में, सबसे पहले वो प्राइम मिनिस्टर मतलब टू बी प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को मिले और दे हैड अ 3-आवर कॉन्वर्जेशन. उस कॉन्वर्जेशन के बाद माउंटबेटन जी ने अपनी टीम को बताया कि पंडित नेहरू इज गॉसिपी एंड मेलिशियस, दीज आर द वर्ड्स ही हैज यूज्ड अबाउट हिज कॉलीग्स इन द कांग्रेस पार्टी. वही गॉसिप जो उन्होंने पंडित जी से अक्वायर की वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध यूज की अपना प्लान मनवाने के लिए, नंबर वन. नंबर टू, वेरी क्विकली उन्होंने पंडित जी को कन्विंस कर लिया कि महात्मा गांधी इज एन अनरियलिस्टिक पॉलिटिशियन एंड मस्ट बी केप्ट आउट ऑफ पार्टीशन टॉक्स. इसलिए जब वो शिमला में पूरा प्लान बन चुका तब तक गांधी जी को किसी ने कुछ बताया ही नहीं. फिर एज अ टोकन स्टैम्प आफ्टर द होल प्लान वॉज मेड एंड डिसाइडेड एंड एवरीथिंग, गांधी जी गए माउंटबेटन के पास और क्या किया उन्होंने उस मीटिंग में, ही रोट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि उनको भी पता था कि उन्हें साइडलाइन किया है. आज मेरा मौन व्रत है लेकिन तुम भी नहीं चाहोगे कि आज मैं कुछ बोलूं. तो अब किसका तो किसको जाना चाहिए ये पार्टीशन का क्रेडिट? पंडित जवाहरलाल नेहरू.
हाँ, बट मतलब जो लेटर्स मैंने देखे हैं और जो पढ़े हैं और जो कॉन्वर्सेशंस भी हुई हैं, इवन सरदार पटेल वाज ओके विद,
यस यस,
बोथ सरदार पटेल एंड नेहरू दोनों एग्री कर रहे थे कि ये हाँ जितना जल्दी हो सके
Correct. Sardar Patel died a congressman. Mm-hmm. Let's put it that way. He was a congressman when he was alive and he died also a Gandhian congressman.
उसमें अच्छा अब partition हो गया तो उसके बाद कांग्रेस का क्या रोल था कि अगर उनका कांग्रेस नहीं होती जो गांधी जी ने बोला था कि अगर कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए एज अ पार्टी एंड लेट एवरीबडी हैव देयर ओन यूनिट्स पार्टी यूनिट्स तो कैसे डिफरेंट होता क्या ऐसी चीज़ें थी जो हुई पार्टीशन के जस्ट बाद
जी
जिसकी जो अवॉइड की जा सकती थी जो फेस्टरिंग प्रॉब्लम्स बनी बाद में तो उसमें मेन पॉइंट आपका क्या है कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो क्या अच्छा होता
सो गांधी जी ने जब ये ऐलान किया कि कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहनी चाहिए दैट वाज द लास्ट लेटर ही रोट बिफोर ही डाइड करेक्ट तो उन्होंने पार्टीशन भी देखा उन्होंने कश्मीर के इशू को कैसे हैंडल किया वो भी देखा और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का कुछ इनिशियल टर्म भी देखा एज प्राइम मिनिस्टर उसके बाद ये उन्होंने इन्फॉर्म्ड लेटर लिखा कि पॉलिटिकल पार्टी का पर्पस ही ख़त्म हो चुका है और कांग्रेस को डिस्बैंड करके लोक सेवा संघ बना दो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बना दो जो ग्रास रूट से काम करे ईच विलेज में एक स्ट्रक्चर हो वगैरह वगैरह टेक्निकली तो पंडित जी वॉज चोजन ऑल्सो एज प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही वॉज हेड ऑफ कांग्रेस तो अगर लोक सेवा संघ रेकमेंड कर रहे हैं विच मीन्स दैट गांधी जी विल्ड के नेहरू जी एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करें ना कि प्रधानमंत्री बने तो ये जो प्राइम मिनिस्टेरियल पोजिशन का हाईजैक हुआ है बाय पंडित नेहरू एंड फैमिली दैट इज अगेंस्ट महात्मा's विशेस
तो उसके बाद ऐसा क्या मतलब कहेंगे कि पार्टीशन के बाद
या सो आफ्टर पार्टीशन ऑब्वियसली द फर्स्ट बिग इशू टू हैव हैपेंड इज द कश्मीर इशू विच पंडित जी अगेन मिसमैनेज्ड यहाँ पे भी हमने जैसे बात की आपने भी बताया कि ब्रिटेन के कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स थे गिलगित में उनके न्यूक्लियर सीज़मिक मॉनिटरिंग स्टेशंस थे एवरीबडी वाज इन द रेस फॉर द एटम बॉम्ब ना केवल उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि सोवियत कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं रेस फॉर द एटम बॉम्ब बनाने में कितने सक्सेसफुल हो गए लेकिन इनको क्योंकि अमेरिकन भी इनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना बंद कर दिया था तो खुद की इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करनी पड़ती थी तो उनके लिए बहुत ही क्रूशियल था कि
वर्ल्ड पावर बने रहना है
हाँ, तो ये एटम हाँ ये न्यूक्लियर रेस में उनको आगे रहना है उनका पूरा एक एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क था उस गिलगित रीजन में प्लस मिडिल ईस्ट का जो उनको दरवाजा ओपन रखना था फॉर द ऑयल वो उनको वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से मिल जाता तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी था ये नॉर्थ वेस्ट बेल्ट ऑफ कश्मीर और गिलगित पर अपना होल्ड जमा के रखना अब अगर हमारे लीडर्स जो अपने आप को बहुत बड़े स्टेट्समैन मानते थे
एंड क्लोज टू ब्रिटिश लीडर्स
उनको कुछ भी जियोपॉलिटिक्स का आइडिया होता तो दे कुड हैव नेगोशिएटेड दैट पार्ट गिलगित एंड दैट वेस्टर्न कश्मीर जो एरिया है कि आप ताइवान जैसे हांगकांग जैसे टेक इट फॉर अ लॉन्ग लीस यू नो एंड दे कुड हैव नेगोशिएटेड कि पाकिस्तान को कम एरिया दे दो ये एरिया आप लॉन्ग लीस पे रख लीजिए हम आपको ये एरिया में पूरी कोऑपरेशन करेंगे और पाकिस्तान का जो आपको टुकड़ा देना है जना को छोटा सा एक मैच बॉक्स दैट ही वॉज विलिंग टू एक्सेप्ट वो मैच बॉक्स साइज का पाकिस्तान बनाकर दे दीजिए बाकी की जमीन हमारी लेकिन बिकॉज क्योंकि उनको उस वक्त की जियोपॉलिटिक्स समझ नहीं आ रही थी वो ये नेगोशिएशन नहीं कर पाए जो आज भी कंट्री डील कर रही है इन इश्यूज से सो बेसिकली कश्मीर का जो हमने नॉर्थ वेस्ट दे दिया और फिर कबालीज आ गए उसमें से भी आपने गिलगित की वो स्टोरी सुनी है कैसे गवर्नर गिलगित एजेंसी के गवर्नर के घर ब्रिटिश ऑफिसर अब ब्रिटिश मैन गए उनके घर उनको हॉस्टेज रखा रुकी ओवरनाइट वहां पे, जब तक पाकिस्तान से कोई आर्मी वाला आ ना जाए और हैंड ओवर ना कर ले. तो ये तो ब्रिटेन की कॉन्स्पिरेसी थी, उनको यही करना था. तो माउंटबेटन की तो इतने नजदीक के दोस्त थे ना पंडित जी, वो समझ नहीं पाए.
गिलगित बाल्टिस्तान तो पूरा का पूरा, मतलब एक ऑफिसर ने वहां पे टेक ओवर करके और हैंड ओवर कर दिया पाकिस्तान को. हाँ. उसके लिए उनको पाकिस्तान ने शायद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया है.
करेक्ट करेक्ट. मेजर ब्राउन. फिर कबालीज आए, इन्वेजन वगैरह वगैरह. एक्सेशन के डिले में भी यू नो पंडित जी को ये एस्टेब्लिश करना था कि हम कितने सेक्युलर है, और वो सेक्युलर और उनकी दोस्ती जो थी शेख अब्दुल्ला के साथ, उनके जो कंडीशंस रहे महाराजा के पास एक्सेशन, क्योंकि महाराजा तो मार्च 1947 से कृपलानी जी, आचार्य कृपलानी जी जब गए थे तब महाराजा तब से उन्हें कह रहे कि आई वांट टू जॉइन इंडियन यूनियन. उन्हें वो 30 जुलाई को जो प्रिंसेस की मीटिंग हुई माउंटबेटन के साथ, उसमें भी नहीं बुलाया गया महाराजा हरि सिंह को,
क्योंकि उन्होंने पोल खोल दी थी ना उन पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी. सभी ये सोच रहे थे कि महाराजा हरि सिंह तो ब्रिटिश सरकार का पक्ष लेंगे, लेकिन वहां पे उन्होंने सबकी पोल खोल दी. और वो स्पीच जो है उनकी उस टाइम पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ने लायक फर्स्ट
ना, यस यस यस. एंड व्हेन, और जब माउंटबेटन 17 जून 1947 को कश्मीर गए, तब आई थिंक वो 3 या 4 दिन के लिए गए थे परिवार से. हरी सिंह उन्हें लेने आए गाड़ी ओपन कार में, और हरी सिंह ड्राइव कर रहे थे. तभी उनको पता लग गया कि माउंटबेटन का क्या की क्या इच्छा है, क्योंकि माउंटबेटन ने उन्हें कंसील्ड तरीके से कहा कि मैंने इंडियन लीडरशिप से बात कर ली है, और अगर आपको पाकिस्तान के साथ जुड़ना है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. ये सेंटेंस माउंटबेटन बोले और हरी सिंह ने अपने आप को बंद कर दिया. उस ड्राइव के बाद वो माउंटबेटन को मिले ही नहीं. उन्होंने माउंटबेटन को कोई फिशिंग एक्सपेडिशन वैसे भेज दिया कहीं पे, और बोला कि मैं लास्ट दिन को आपको मिलूंगा. और लास्ट दिन फिर मैसेज भिजवाया कि उनको लूज मोशंस हो गए हरी सिंह को, कि वो मिल नहीं पाएंगे आपको. क्योंकि वो एक जो सेंटेंस बोला ना माउंटबेटन ने कि आपको अगर पाकिस्तान से जुड़ना है तो इंडियन लीडरशिप को कोई आपत्ति नहीं होगी. तो उसमें से वो समझ गए कि कांग्रेस वाले, मतलब पंडित जी वगैरह तो यही, उनको कोई आपत्ति नहीं है कि मैं
इधर जाओ चाहे इधर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको.
फिर तो ये पंडित जी की जो कंडीशंस है कि शेख अब्दुल्ला को रिलीज करो प्रिजन से, उसको सब करता धरता बना दो, फिर हम आपका एक्सेशन एक्सेप्ट करेंगे. वो भी किया इवेंचुअली डेस्परेशन में, वो भी महाराजा हरी सिंह ने किया. और फिर तब तक कबालीज आ गए, बहुत देर हो गई.
शेख अब्दुल्ला भी एक्चुअली जो 1930s में, जो अर्ली 1930s में जब हरी सिंह, मतलब उन्होंने रिवोल्ट टाइप का कर दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की स्पीच के बाद, फिर इन्होंने ये ब्रिटिश ने ये निकाला कि शेख अब्दुल्ला खड़ा किया, वो जो राइट्स हुए थे उस टाइम पे, तो वो भी उनका ही एक प्रोजेक्ट था शेख अब्दुल्ला भी.
करेक्ट करेक्ट.
अच्छा, ये एक फेस्टरिंग प्रॉब्लम जो इन्होंने क्रिएट की कांग्रेस ने, ये कश्मीर को जिस तरीके से हैंडल किया,
यूएन इशू
वहां तो परमानेंटली डैमेज कर दिया हमारा इंटरेस्ट.
क्योंकि वहां पे भी आप देखिए हमारा जो वॉर था कबालीज के साथ और फिर पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व हो गई, इंडियन आर्मी, दोनों की कमांडर इन चीफ ब्रिटिश थे.
बिल्कुल.
हमारे तो गवर्नर जनरल भी ब्रिटिश थे, तो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे. अब यूएन जाने से पहले क्रिसमस के दिन पे एक और लेटर है जो माउंटबेटन ने पंडित जी को लिखा है, ये कह के कि अगर आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर जल्दी से सुलझ जाएगा और दुनिया का सपोर्ट आपके इंटरेस्ट में होगा तो आप गलत सोचते हैं, आपको यूएन जाना ही चाहिए. मतलब आपकी इंप्रेशन एज अ स्टेट्समैन गलत पड़ेगी, इसलिए आप यूएन चले जाओ, ऐसा लेटर में लिखा. तो कौन, मतलब देश के प्राइम मिनिस्टर की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, कि आपका स्टेट्समैन तरीके का इंप्रेशन गलत पड़े या आपको अपनी जमीन लेनी है वापस?
ये एक्चुअली अभी रिसेंटली हम 1962 और 1965 वाले युद्ध पे जो हुआ था चाइना और पाकिस्तान के साथ, उस पर डिस्कशन कर रहे थे शिव कुणाल वर्मा जी के साथ। तो उन्होंने भी कहा कि 1962 के युद्ध के बाद तो बुरा हाल हो गया था, तो माउंटबेटन आए थे इंडिया में और उन्होंने ऑलमोस्ट कन्विंस कर लिया था कि चलो ये तो हो गया जो हुआ, लेकिन आपको स्टेट्समैन के उसमें अगर आपको वर्ल्ड में याद रखना है तो आप कश्मीर जो है उसका पार्टीशन जो है उस तरीके से कर दीजिए कि थोड़ा पाकिस्तान को मिल जाए और थोड़ा इंडिया को मिल जाए।
करेक्ट।
तो ये भी ऑलमोस्ट वो हो गया था, वो तो मतलब नेहरू जी चल बसे जैसे शिवशंकर उन्होंने कहा हाँ,
कि देयर इज अ गॉड समवेयर,
देयर इज अ गॉड समवेयर, तो वो हो गया, नहीं तो फिर क्या पता हमको। मतलब 65 की लड़ाई भी एक बहुत बड़ा कारण ये था कि वो पार्टीशन नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत खुशी से मतलब वेरी ग्लीफुली देवर रबिंग द हैंड्स कि अब तो मतलब आ ही जाएगा कश्मीर हमारे हाथ, पर नेहरू जी चल बसे और वो आया नहीं, और उसके बाद उन्होंने ये प्लान रचा कि 65 का युद्ध उससे उसकी तरफ गया।
62 वॉर में भी हमने जो चाइना को लिटरली हमारी टेरिटरी दे दी अक्साइचिन, वो तो कम में खत्म हुआ, मतलब हमारा
तो
पूरा
नॉर्थ ईस्ट
ना, उनकी
मेहरबानी थी कि भैया वो ज्यादा इधर नहीं आना
चाहता। हाँ, पूरा नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हमारे सेंसिटिव नेक जो बोलते हैं, वहां से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट वो ले लेते। वो दो लेटर्स जो नेहरू जी ने एज प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कैनेडी को लिखे, एक दिन में दो लेटर्स लिखे, सुबह और एक शाम। सुबह के लेटर में बोल रहे हैं कि हमें इतने इतने अमेरिकन जेट्स की ज़रूरत है, प्लीज़ भेजिए, प्लीज़ आइए हमारे तरफ से वॉर लड़िए। और उसी दिन शाम को इतनी बुरी हो गई सिचुएशन कि उसी दिन पे उन्होंने दूसरा लेटर लिखा कि प्लीज़ अमेरिकन्स को हमारे लाइक देल हैव टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, ऐसे भी नहीं एलाइज की जैसे, ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, वरना हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट ये लोग ले लेंगे।
अच्छा, इसमें दो इंटरेस्टिंग बातें हैं। जब ये लेटर लिख रहे थे, जो कि उनकी शेमफुल लेटर्स, जो उनकी मदद मांग रहे थे, पहले तो वो पूरे ज्ञान देते थे यूएस को कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, एज अ वर्ल्ड लीडर विश्वगुरु की तरह बिहेव करते थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो उस समय जब वो लेटर्स लिख रहे थे, तब चाइना ने सीज फायर यूनिलेटरली अनाउंस कर दिया था। लेकिन हमारे जो वहाँ पे जो एम्बेसी में थे वहाँ पे, उन्होंने वहाँ तक मैसेज पहुँचाने में इतना टाइम लगा दिया कि नेहरू जी ने दोनों लेटर पहुँचा दिए थे इतने। तो ये अगर थोड़ी सी भी पहले पहुँच जाता तो वो एम्बेरसमेंट से बच जाते नेहरू। और दूसरी बात ये कि वो उनसे मांग रहे थे मदद, यूएस से एयरफोर्स की, जेट्स की, फाइटर्स की, लेकिन अपनी एयरफोर्स यूज ही नहीं की,
मोबिलाइज ही नहीं की बिल्कुल।
और चाइना वाले इनके लेटर्स में, उनकी मिलिट्री हिस्ट्री में, कि अगर भारत ने एयरफोर्स यूज की तो हम कहां जाएंगे,
हमारे
क्योंकि
पास
दे वर सिटिंग इन ओपन,
और हमारे पास जो माउंटेन्स है उसका एडवांटेज है ना कि स्लोप्स इस तरफ के जेंटलर है, तो
वो तो खुले दिखते थे। और वहां पे ऐसा कोई वेजिटेशन तो है नहीं कि आप किसी कहीं छुप जाओ।
Correct.
कोई मतलब पेड़ है, कोई ब्रश वो है, वहां पे छुप नहीं सकते, कोई श्रब्स नहीं है।
करेक्ट।
वो तो खुला सूखा मैदान है, वो तो पहाड़, बिल्कुल सूखे पहाड़ है।
तो सो कश्मीर मिसहैंडलिंग और 62 वॉर
तो शुरुआत हैंडलिंग होती है तिब्बत जो टेक ओवर किया वहीं से हो जाती है।
हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो ये दोनों के बीच में हमने 45% लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खोया है। 45% वो कितना होता है, मैंने मैप डाला है बुक में,
उससे भी ज्यादा। मतलब आप देखिए कि स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, हमने अपना रास्ता खो दिया सेंट्रल एशिया का।
हाँ, करेक्ट।
अफगानिस्तान का रास्ता खो दिया।
करेक्ट। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को थोड़ा मानना ही पड़ेगा ना कि आपने 45% लैंड दे दिया जम्मू कश्मीर का।
बिल्कुल। ये ब्लंडर्स हुए कुछ, पार्टीशन एज वे जियोपॉलिटिकल कह लीजिए, सिविलाइजेशनल ब्लंडर्स मैं कहूँगा। उसके बाद थोड़ा इकोनॉमी पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सेक्शन है आपके उसमें। ये बात तो बोली जाती है कि अगर भारत 1991 में लिबरलाइज करना शुरू किया, अगर काश 1951 में किया होता तो हम आज किस स्थिति में पहुँचते। तो वहां पे क्या क्या ब्लंडर्स आप मानते हैं कि अगर कांग्रेस ना होती या कांग्रेस के अंदर ये लीडर्स की बजाय ये लीडर्स होते, क्योंकि एक बात हमेशा बोली जाती है कि अगर नेहरू की जगह प्रधानमंत्री अगर सरदार पटेल बनते तो जो इकोनॉमी की हालत थी वो काफी अलग दिखती।
करेक्ट।
और उसमें भी नेहरू का जो के अंडर जो ग्रोथ आई 5% के आसपास वो भी इट्स कंसिडर्ड गुड कंपेयर टू व्हाट हैपेंड अंडर इंदिरा गांधी।
करेक्ट।
वो तो 2-3% पे ही पहुंच गए।
करेक्ट।
5% पे भी ग्रो करते तो हम बहुत आगे पहुंच जाते आज।
करेक्ट।
तो ये क्या ब्लंडर्स थे, मेजर ब्लंडर्स जो इकोनॉमिकली हमको पीछे रखा इतने साल तक?
आई थिंक नेहरू जी बहुत ही फैसिनेटेड थे सोवियट्स के ये यू नो कम्युनिज्म सोशलिज्म पर्सपेक्टिव से। प्रॉब्लम ये था कि हम गरीब देश थे उस वक्त, सब चोरी कर लिया था हमारा। जब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है बांटने के लिए इक्वल, तो आप कहाँ से लाओगे? राइट। तो आपको आपकी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना ही पड़ता है, देश को वापस एक सर्टेन लेवल तक लाने के लिए, जिसके बाद आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाओ। तो ये वो समझे ही नहीं। अब इंदिरा जी को भी बहुत समय से, जब से वो नेहरू जी के साथ सब जगह घूमती थी, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेती थी, तब से ये मिट्रोकिन आर्काइव्स में लिखा है कि केजीबी ने इंदिरा जी को काफी ग्रूम किया। और उस टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस में मोल्ड किया। और इंदिरा जी ने अपने लेटर्स में भी एक लिखा है कि जब वो सोवियत जब वो गई तब कैसे उनको ल्योर करने के लिए, सराउंडेड बाय लग्जरी, सराउंडेड बाय हैंडसम मेन, यू नो, सेंट ऑन वेकेशंस। उसने अपने पिताजी को उस वक्त भी लिखा था कि आई हैव नॉट हैड दिस टाइप ऑफ हॉलीडे इन ईयर्स। सो शी वॉज ऑल्सो वेरी इन्फ्लुएंस्ड और उनको इन्फ्लुएंस किया गया। सेकेंड थिंग जो हुआ, इंदिरा जी वॉज अ कंट्रोल फ्रीक इन माई ओपिनियन। उन्होंने वो लाइसेंस राज का पूरा जो पॉलिसी है, शी कन्वर्टेड दैट इंटू एन एक्सटॉर्शन रैकेट। कि मानो एक टेक्सटाइल बिजनेसेस का ग्रुप है जो देश के आपके टॉप 20 टेक्सटाइल सेक्टर के बिजनेसमैन है, उनका एक व्हाटएवर एसोसिएशन है। पहले तो ये लोग वहाँ रूमर फैलाते थे कि आपको ये आपके सेक्टर में हम ये 3 लाइसेंसेस इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर एनुअल रिन्यूअल वगैरह वगैरह टू ऑपरेट योर फैक्ट्री, एक्सपोर्ट करने के लिए, इम्पोर्ट करने के लिए, व्हाटएवर। फिर वो ग्रुप थोड़ा पैनिक हो जाता था कि अब लाइसेंसेस इंट्रोड्यूस करेंगे तो डिले होंगे, काम बंद हो जाएगा, इनको यू नो इनके पैरों में गिरना पड़ेगा बार बार वो लाइसेंस रिन्यूअल्स के लिए। तो फिर वही ग्रुप प्लीज़ हमें मिलिए, प्लीज़ हमें मिलिए, मिल लीजिए, फिर ऐसा कर करके आते थे दिल्ली सूटकेसेस में भर भर के कैश लेके कि आप कैश रख लीजिए, प्लीज लाइसेंसेस इंट्रोड्यूस मत कीजिए, और लाइसेंसेस इंट्रोड्यूस मत कीजिए, ऐसा कर करके
पॉलिटिकल करप्शन।
हाँ, इतना एक्सटॉर्ट किया है बिजनेसमैन को इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी जी स्पेसिफिकली। संजय गांधी हैज स्पेसिफिकली डन दिस, ही यूज्ड टू हैंडल दिस, वो यही हैंडल करते थे। जब उनकी डेथ हुई संजय गांधी की, तब बी के नेहरू ने राजीव गांधी को पूछा ये जो सारा पैसा संजय ने कलेक्ट किया है वो कहाँ है? तो राजीव गांधी बोले कांग्रेस की अलमारी में तो सिर्फ 20 लाख रुपए है। तो
अच्छा, ये कहीं डॉक्यूमेंटेड
है? हाँ, मैंने सोर्स कोट किया है। कांग्रेस की अलमारी में सिर्फ 20 लाख रुपए है, ये राजीव गांधी बोले। फिर बी के नेहरू पूछते कितने होने चाहिए, तो राजीव गांधी सेज करोड़ एंड अनकाउंटेड करोड़। तो ये परिवार जो ये बोलते रहते हैं कि व्हाटएवर करप्शन भी हुआ तो वो पार्टी के लिए हुआ, तो वो भी अब दैट इज ऑल्सो अ गलत डिफेंस, क्योंकि संजय गांधी ने जो क्रोर्स एंड अनकाउंटेड क्रोर्स कलेक्ट किए हैं वो पार्टी की अलमारी में तो आए नहीं, तो गए कहाँ?
तो क्या ये पर्सनल वेल्थ की?
ऑफ कोर्स पर्सनल वेल्थ,
बट वो तो फिर हो तो उसके मरने के बाद तो गांधी फैमिली के पास ही आई होगी वो।
ऑफ कोर्स उनको तो पता ही होता है ना कहाँ उनके सेफ हेवंस है।
हाँ, क्योंकि जो मिडिलमैन होते हैं वो तो फिर
जैसे बोफोर्स।
बिल्कुल, वो भी अरुण नेहरू ने लीक करवाया था बोलते हैं। ये इकोनॉमी में और कोई ब्लंडर्स जो आप मतलब एक तो ये पॉलिटिकल करप्शन लिंक्ड ये हो गया, और कोई पॉलिसी
उससे? हाँ, मतलब ये इकोनॉमी से ना जो सोशल पॉलिसीज लिंक होती है देश की, एक सेगमेंट है जहाँ पे एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में मैंने लिखा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है कि पंडित नेहरू विजनरी थे, IITs वगैरह उन्होंने
IIT, AIIMS,
हाँ ओपन किया। अब काफ़ी इकोनॉमिस्ट्स है जैसे कि जगदीश भगवती जी, अरविंद पानग्रिया सर, जिन्होंने अब इनफ लिखा है 70s से कि पैसे नहीं है इस नाम पर पंडित नेहरू ने प्राइमरी एजुकेशन को कम्प्लीटली इग्नोर किया। डेडलाइंस जो रखे थे 5-year प्लान्स वगैरह में, वो डेडलाइंस भी स्किप कर दिए। 66 में जब एक डेडलाइन स्किप हुआ तब उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी। उस कॉन्फ्रेंस में ये पता चला कि अगर हमें प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति इम्प्रूव करनी है देश में, तो उस वक्त 360 crore रुपए लगेंगे। वो भी नहीं डाले, अपनी जिम्मेदारी हैंड वॉश करके लोकल लेवल पे डाल दी कि आप अपने हिसाब से प्राइमरी स्कूल्स खोल दो। इसके बाद थ्रू कंसेक्यूटिव कांग्रेस गवर्नमेंट्स, यू नो, इवन इफ इट इज राइट टू एजुकेशन, यू नो, या 90s में भी जो प्राइमरी एजुकेशन में हमने लोन्स लिए थे, उसमें हमने एक्चुअल एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं किया, प्राइमरी एजुकेशन को। इनफैक्ट हमने टीचर क्वालिफिकेशंस को डिग्रेड कर दिया ताकि ज़्यादा वर्कफोर्स में आए। अब इकोनॉमिस्ट्स ने ये लिखा है, इनफ रिसर्च है कि पैसे नहीं है इसलिए आप प्राइमरी एजुकेशन नहीं स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, इससे इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट होता है। इट इज़ द अदर वे राउंड कि आपकी इकोनॉमी इज नॉट मूविंग फास्ट इनफ बिकॉज यू डोंट हैव गुड प्राइमरी एजुकेशन। एंड दिस इज अ वेरी बिग, ये बहुत बड़ी हमारी फाउंडेशन में मिस्टेक हुई है।
नहीं, वो तो उसका आज भी हम भुगत रहे हैं कि जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दैट इज सो पुअर, दैट इज अनएम्प्लॉयबल। अनएम्प्लॉयमेंट की तो बहुत बात होती है, लेकिन आप मार्केट में ढूंढने जाओ हायर करने के लिए, नहीं मिलते लोग
करेक्ट
जिनके पास अप्रोप्रिएट स्किल्स हों, और ना वो हमने उस तरीके की फाउंडेशन लगाई है कि दे कैन ईजिली स्विच बिटवीन जॉब्स, अपने आप को रिट्रेन कर सके, ना स्कूल्स का, जैसे बाहर ट्रेड स्कूल्स होते हैं उस टाइप का भी हमने सिस्टम नहीं किया। IITs की जो हालत है
जी,
वो मतलब बहुत दयनीय है।
मतलब IIT करने का क्या फायदा? मतलब इज इट ओनली कि आपने अपने अमीर दोस्त और वो अमीर इकोसिस्टम के लिए आपने IIT खोला कि वहां से आए और फिर ब्रेन ड्रेन सब चले जाए अब्रॉड?
वो IIT वाला है, लेकिन मैं तो IIT ITI की बात कर रहा हूं, जो ट्रेड स्कूल होना चाहिए था आइडियली उस तरीके से।
हाँ,
तो उनमें से कहाँ लोग निकल रहे हैं?
बेसिक प्राइमरी एजुकेशन, जब आप बेसिक प्राइमरी एजुकेशन नहीं दे पाए जो एक फाउंडेशन होता है नए देश के लिए, तो फिर अब
मेरे ख्याल से पहला जो अटेम्प्ट NEP की बात होती है, लेकिन कोई भी NEP ढंग से इम्प्लीमेंट हुई नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान वाजपेयी जी के समय में वो शुरू हुआ था, उसको आज भी लोग याद करते हैं कि हाँ वहाँ पे कुछ ना कुछ एक फोकस आया था बिना NEP के अनाउंसमेंट के शायद। और पर ये बात जो प्राइमरी एजुकेशन की है, क्या आपको लगता है कि पिछले 10 साल में भी भाजपा के आने के बाद भी उतना काम नहीं हुआ, या वहाँ पे उनका क्या अप्रोच है? क्योंकि अभी भी अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए 2014 में भी शुरू करते हैं हम, तो अभी तक शायद एक बैच तो हमारे पास आने लगता कि उस तरीके से स्किल्ड।
मुझे लगता है ये प्रॉब्लम इतना बड़ा हो गया है अब पूरे देश में, ऐसा एक भी स्टेट नहीं है जहाँ विच इज़ परफॉर्मिंग बेटर दूसरी स्टेट से। कि इस प्रॉब्लम को अब थोड़ा थोड़ा भी कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अर्जेंट नीड है ये देश की, अर्जेंट नीड है।
देखिए ना, मतलब प्राइमरी स्कूल का, आप प्राइवेट स्कूल्स की बात कर लीजिए, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे सुबह निकलते हैं 6-7 बजे, आते हैं 2 बजे, ठीक है, उसके बाद फिर निकल जाते हैं ट्यूशन के लिए, और वहाँ पे क्या करते हैं, जो वहाँ पे होमवर्क दिया होता है वो वहाँ पे ट्यूशन पे करते हैं 3-4 घंटे
जी,
मतलब बिना ब्रेनलेस वर्क, जो होमवर्क होता है वो पता नहीं क्या तो होमवर्क होता है, वही जो वहाँ पे सिखाया वही लिखते हैं, कॉपी करते हैं,
करेक्ट,
और फिर वो आ जाते हैं 7 बजे, मतलब पूरे 12-13 घंटे वो बाहर ही रहते हैं, ना खेलने का समय है ना कुछ, फिर आके वो फोन में अपना लग जाते हैं।
करेक्ट, करेक्ट।
तो ये क्या, हम क्या कर रहे हैं, मतलब इस,
मतलब क्लियरली इसमें रिफॉर्म चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल से ही ये रिफॉर्म होगा, तो आई होप कि हमारी बातें कोई सुन ले और ये रिफॉर्म लाए। अब 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए, जहाँ पे कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ओपन अप हुई, उस वक्त भी हमें वर्ल्ड बैंक के फंड्स के अगेंस्ट उनकी एक कंडीशंस थी कि आप फ्री ट्रेड, यू नो, फ्री मार्केट पॉलिसीज थोड़ी इंप्लीमेंट कर लीजिए। अब उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, दीज वर द मैन ऑफ द मोमेंट, जिनको क्रेडिट जाता है आज भी कि इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अशर किए, करेक्ट। ये मैंने लिखा भी है सोर्स के साथ कि सोनिया जी इतनी नाराज हो गई इसके बाद कि 8 दिन के बाद पार्टी की मीटिंग में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ को काफ़ी सुनाया कि आपने पार्टी का जो स्टैंड है उससे डिपार्चर लेके ये रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं, और जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी के साथ किया है डेथ के बाद भी, वो तो आज सबको पता है कि उनकी बॉडी को कांग्रेस कार्यालय में आने नहीं दिया जब वो गेट पे खड़ी थी, और सोनिया मैडम ने अपना नॉड नहीं दिया बॉडी को अंदर आने के लिए।
प्रणब मुखर्जी ने ये अपनी बुक में भी लिखा है कि मैंने उनको बोला भी था कि, मतलब अपनी डायरीज में लिखा है शायद, कि मैंने कहा था उनको कि उनको आने दो, क्योंकि ही वाज वेरी गुड फ्रेंड्स विद पीवी नरसिम्हा राव, तो लेकिन वो हिली नहीं, मतलब
शी डिड नॉट नॉड हर हेड।
ये सच्चाई है कांग्रेस,
सो दिस इज द इकोनॉमी पार्ट ऑफ इट, और ऑब्वियसली उसके बाद जो यूपीए का टर्म था वो तो इनंडेटेड विथ स्कैम्स
करप्शन
एंड फाइनेंशियल ट्रैवल ऑफ फाइनेंसेस, यू नो, टुवर्ड्स टेररिज्म, एंटी सोशल एक्टिविटीज, तो वो तो एरा ही, दौर ही ऐसा था।
अच्छा, एक बात, जब हम बात करते हैं व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, तो व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, तो मतलब इसमें सीधा आता है कि अगर कांग्रेस ना होती तो शायद बीजेपी भी ना होती।
देखिए, मेरी बुक का टाइटल है व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, लेकिन मैंने लिखा है जो आज के इश्यूज, जो लाइव वायर्स है, जैसे कि खालिस्तान का इशू भी जो इतना बड़ा, यू नो, इट्स द मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल नाउ, और बाकी कश्मीर या पार्टीशन या इकोनॉमी डायनेस्टी पॉलिटिक, ये सब की बैक स्टोरीज विथ फैक्ट्स, इसमें कुछ व्हाट इफ जैसा एलिमेंट नहीं है इस किताब में, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ फिक्शन, इट इज कम्प्लीटली फैक्ट बेस्ड।
बट हम थोड़ा इमेजिनेशन करते हैं कि अगर कांग्रेस ना होती तो ये सब प्रॉब्लम्स ना होती, लेकिन उसमें से जो उनके खिलाफ एक आइडियोलॉजिकल आंसर आया इन फॉर्म ऑफ बीजेपी, वो भी शायद इन पॉलिटिकल फॉर्म ना होता।
अगर कांग्रेस ना होती तो शायद फॉरवर्ड ब्लॉक एक पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती थी, सुभाष चंद्र बोस प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे।
मतलब जो आइडियोलॉजी बीजेपी और तो 1950 से ही चल रही है, संघ, जनसंघ जो था, तो वो हो सकता था कि एक मूवमेंट पहले से ही शुरू हो जाती।
हाँ, जो क्योंकि जब ब्रिटिश ने सत्ता पास की हमें आज़ादी देकर, दे वर कंफर्टेबल विथ द देन कांग्रेस लीडरशिप जो बिल्कुल एंग्लिसाइज थी। मतलब कहीं पे तो ये लिखा भी है कि नेहरू जी वाज द लास्ट इंग्लिशमैन,
नहीं उन्होंने खुद ही बोला है,
हाँ, आई एम द लास्ट इंग्लिशमैन टू रूल इंडिया। यस, शायद उनको पता नहीं था कि उनके जो डायनेस्ट्स है वो सब ऐसे ही निकलेंगे।
नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें और कुछ आप कुछ इंटरेस्टिंग जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा जब बुक लिख रहे थे, जब रिसर्च कर रहे थे, क्या आपको सबसे फैसिनेटिंग चीज लगी इस पूरे बुक में?
नॉट फैसिनेटिंग बट आई थिंक ट्रबलसम,
या जो आपको पहले नहीं पता था जो इसमें आपने फाइंड आउट किया?
आई थिंक ट्रबलसम कि जिस तरीके से सेपरेट सिख नेशन की जो डिमांड खड़ी की गई इलेक्शन जीतने के लिए, वही मुस्लिम लीग की जो साइकोलॉजी है कि इस्लाम इंडेंजर इस्लाम इंडेंजर, सेम साइकोलॉजी यूज्ड वंस अगेन बाय इंदिरा गांधी एंड हर सन टू मॉडरेट हिंदूज और मॉडरेट सिख्स को ये दिखाने के लिए कि आप डेंजर में हो, आप डेंजर में हो रेडिकल सिख के, उन्होंने ये पूरा मुद्दा क्रिएट किया इलेक्शन जीतने के लिए. और आज देखो, आज भी कंट्री को थ्रेट्स है उसके जो ब्रेकआउट, उसकी वजह से जो स्नोबॉल होके इस इशू जो बड़ा बन चुका है. काफ़ी मोमेंट्स आए, और आपको तो पता ही होगा कि जब भिंडरन वाले को वो शांतिपूर्वक तरीके से कैप्चर कर सकते थे लेकिन नहीं किया, क्योंकि वो इमेज जो है माँ दुर्गा वाली, वो इमेज फिर कैसे बनती राइट इलेक्शन जीतने के लिए. तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि जब आप कोई एक कम्युनिटी को भड़काते हो, रेडिकलाइज करते हो, और फिर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनको ये समझाते हो कि हम आपको बचाएंगे, क्यों? इलेक्शन जीतने के लिए. तो ये जो अपीजमेंट की राजनीति है, तुष्टिकरण की राजनीति जो बोलते हैं, जो फिर टेररिज्म और भी डेंजरस फॉर्म्स ले लेती है, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है. ये वो लोग मुस्लिम्स के साथ भी करते हैं और सिखों के साथ भी किया है उन्होंने.
ये एक्चुअली जो सिख वाला जो सेपरेटिज्म वाला जो इशू हुआ, उनका ये गेम तो बहुत पहले से चल रहा था. ये तो ब्रिटिश ने जो इंट्रोड्यूस किया था, और फिर सिंह सभा का जो मूवमेंट चला पूरा 1920s से, उससे पहले से ही वो रेडिकलिज्म जो आ रहा था सिखों में, क्योंकि एक टाइम पे तो ये भी डिमांड थी कि सिख जो है वो अलग देश बनना चाहिए सिखों का, बट वो 1947 में नहीं हुआ. लेकिन फिर उन्होंने पूरा मूवमेंट चलाया, अकालियों ने पूरा मूवमेंट चलाया, तो वो रेडिकलिज्म जो SGPC के थ्रू हुआ, ये पूरा का पूरा चल रहा था इवन विदाउट बिफोर इंदिरा गांधी केम टू पावर.
करेक्ट.
तो ये
सो दैट्स व्हेयर द आईडिया केम
फ्रॉम, के लिए रेडिकलिज्म को फाइट करने के लिए उन्होंने एक और रेडिकल व्यक्ति को लेके आए, ये भिंडरा वाले को.
बट दैट इज व्हेयर द आईडिया केम फ्रॉम. भिंडरा वाले को ये लोग लाए, लेकिन भिंडरा वाले रेडी नहीं थे बोलने के लिए कि मुझे अलग कंट्री चाहिए. वो तो हर इंटरव्यू में बोलते थे कि हाँ वो मैडम जी दे देंगे तो ले लूंगा. डिमांड नहीं करते थे कि मुझे अलग नेशन दो खालिस्तान. अब वो डिमांड को भी क्लियर करने के लिए ये लोग ने दल खालसा क्रिएट किया. वो इतना भी इमेजिनेशन पे नहीं छोड़ना चाहते थे. दूसरी चीज, एक और इंटरेस्टिंग चीज है बुक में जो मैं एक्चुअली पढ़ के थोड़ी सी शॉक हो गई.
दल खालसा इन्होंने क्रिएट किया था,
तो फंड भी किया उन्होंने. उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इन्होंने फंड की थी. ये जो आज भी जिंदा है मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी, उन्होंने कुलदीप नायर को बोला है, रिसीट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के होटल में के, और सोर्स है बुक में. एक और चीज जो इमरजेंसी के वक्त, एक तो ऑब्वियसली इमरजेंसी इज अ बिग ब्लैक ब्लॉट ऑन आर डेमोक्रेसी, और कोई भी पार्टी जो इमरजेंसी लाती है वो डेमोक्रेसी पे लेक्चर देने नहीं दे सकती. लेकिन उसमें भी कुछ एक्ट्स ऐसे हुए जो इनह्यूमन थे, कंप्लीटली इनह्यूमन. फॉरगेट स्टेरिलाइजेशन, ये वो, ये तो है ही जो पब्लिक प्रोटेस्ट में जाग गई. लेकिन जयप्रकाश नारायण को मिस्टीरियसली इंदिरा गांधी जी ने हॉस्पिटल में रखा. देर वॉज नो नीड. कैप्टिविटी में हॉस्पिटल में रखने की उनको कोई नीड ही नहीं थी, फिर भी उनको हॉस्पिटल में रखा. और फिर जयप्रकाश नारायण ने अपने लॉयर्स को, अपने फॉलोअर्स को ये बताया कि देर वॉज नो सनलाइट. ऐसे ही कमरे में रखा कि ना आउटसाइड से एयर ना सनलाइट. डॉक्टर्स आते थे, कुछ कुछ दवाइयाँ देते रहते थे उनको रोज. फिर जयप्रकाश जी ने ये अपने लेटर में लिखा है कि आई थिंक आई वॉज पॉइजन्ड.
ये मेरे को भी रिसेंटली पता चला जब नीरजा चौधरी की बुक मैंने पढ़ी. आई वॉज
बींग डिलिबरेटली पॉइजन्ड. ये नीरजा चौधरी ने भी लिखा है.
स्लो पॉइजन किया गया उनको.
और रामा गोयल ने भी लिखा है. जेपी गोयल वॉज वन ऑफ द लॉयर्स इन दैट ग्रुप. और तभी भी जयप्रकाश नारायण ने ये बताया था जब लॉयर्स उनको मिलने जाते कि ये लोग मेरे साथ कुछ कर रहे हैं, मुझे बता नहीं रहे हैं कि क्या दे रहे हैं, बट आई एम बीइंग पॉइजन्ड. ये सिचुएशन आप आज सोचिए, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है और राहुल गांधी जी उनके मेन पॉलिटिकल अपोनेंट. ये हो सकता है आज. और अगर कोई लीडर ऐसा करे तो व्हाट टाइप ऑफ इनह्यूमन एक्ट इज दिस कि आप अपने पॉलिटिकल ऑपोजिशन यू नो अपोनेंट को, प्राइमरी पॉलिटिकल अपोनेंट को खत्म करने की पूरी कोशिश करो. तो ये मुझे लगता है कि ये जो इनह्यूमैनिटी कभी कभी ये जो डायनेस्टी में दिखती है इनके, जिसकी वजह से कुछ कुछ उनके एक्ट्स भी जो नज़रिया है टेररिज्म की तरफ का या बहुत ज़्यादा अपीजमेंट, तो मुझे लगता है वो यहाँ ये इनह्यूमन साइड इज़ वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री, वेरी डेंजरस.
और जेपी की अच्छाई देखिए कि जब इंदिरा गांधी, ये भी नीरजा चौधरी की पुस्तक में है कि जब इंदिरा गांधी की जो माँ थी, उनकी माँ थी कमला नेहरू, उन्होंने उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे जेपी की वाइफ के साथ. तो उनको जो लेटर्स लिखे हैं कमला नेहरू ने उनकी वाइफ को,
हैंडओवर किए ना इंदिरा जी की लीक ना हो जाए.
उनको उनके उस लेटर्स में पूरे नेहरू खानदान की बुराइयां हैं कि ये मेरे को इस तरीके से ट्रीट करते हैं क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और उस तरीके से विजयलक्ष्मी पंडित के खिलाफ उसमें बहुत कुछ है. तो जब ये पूरा आंदोलन चल रहा था इमरजेंसी के खिलाफ, तो जेपी को किसी ने बोला कि वी कैन यूज दीज लेटर्स पॉलिटिकली, तो कभी काम आ सकते हैं, इनका फोटोकॉपी बना लो या इस टाइप से. बट उन्होंने बोला नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगा. और जब इंदिरा उनसे मिलने आई तो उन्होंने पूरे के सारे जो लेटर्स थे कमला नेहरू के वो उनको दे दिए.
जी,
तो ये उनकी अच्छाई थी. और उनको ये पूरा शक था कि मुझे जहर दिया जा रहा है और उनकी हालत मतलब खराब ही हुई है.
हाँ, उनकी किडनीज तो मतलब ऑलमोस्ट फेल हो चुकी थी, इसलिए तो उनको रिलीज किया ताकि वो कैप्टिविटी में ना मर जाए.
नहीं, ये काफी बड़ा व्हाट इफ है. और हमने जैसे डिस्कस किया बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं
जी
जो क्रिएटेड बाय कांग्रेस, जो नहीं, अगर ये कांग्रेस होती तो शायद वो, हम सर्टेनिटी के साथ तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन एक इंटरेस्टिंग व्हाट इफ है, इंटरेस्टिंग पीस ऑफ हिस्ट्री है जो आप पढ़ सकते हैं. मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ जरूर, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है हिस्ट्री का, इंडियन पॉलिटिक्स का, तो आप जरूर पढ़ें इसको. थैंक यू प्रियम जी, आपने हमसे इतनी लंबी चर्चा की दोबारा से. अगली बार जब आप एक और पुस्तक लिखेंगे तो फिर हम बात करेंगे.
बिल्कुल,
आप ऐसे ही आते रहिए. बहुत अच्छी वार्तालाप लगी.
थैंक यू आर्यन जी, और ऑल द बेस्ट आपके पॉडकास्ट के लिए. आप बहुत पॉपुलर होते जाते हैं.
अरे नहीं, थैंक यू सो मच. थैंक यू.